जीवन में परिणामों की निर्मलता ही हमारा धर्म है और वो परिणामों की निर्मलता श्रद्धा से आती है, सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति हमारी जो श्रद्धा है वही हमारे परिणामों में निर्मलता में कारण बनती है। अब सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा तो हमें हो गई, हमारा दृष्टिकोण अगर नहीं बदला तब फिर वो सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा भी हमारे परिणामों को निर्मल नहीं कर पाए, ये हमने पिछले दिनों बात जानी है कि हमारा अभिप्राय ठीक होना चाहिए। सच्चे देवगुरु शास्त्र तो हमारे परिणामों की निर्मलता में निमित्त बनेंगे, हमें उनके माध्यम से अपने अभिप्राय को ठीक रख के और परिणामों को निर्मल करना होगा, वही हमारा धर्म है। जब हम पूर्णतः अपने परिणामों को निर्मल करते हैं तभी तो हम अपने वस्तु स्वरूप को समझ पाते हैं, ये बात भी हमने समझी है। आज हम एक दृष्टिकोण से और समझें कि श्रद्धा करती क्या है। श्रद्धा हमारे अंतर जगत को हमें दिखा देती है, बाह्य जगत को देखने के लिए हमारी दो आंखें हैं वो इस बाह्य जगत को देखती हैं, लेकिन ये दो आंखें ठीक ठीक देखें ऐसा कोई जरूरी नहीं, ये कितना देख पाती हैं इनकी अपनी सीमा है, इंद्रियों की विषय की सीमा है। लेकिन उन इंद्रियों के पीछे बैठा हुआ जो आत्मा है, जो हमारी चेतना है, कॉन्शियस है, वो अगर ठीक है तो वो वस्तुओं को ठीक ठीक देखेगा। तो बाह्य जगत को देखने के लिए बहुत बहुत मुश्किल है कि हम ठीक देख पाए, लेकिन अगर हमारे भीतर श्रद्धा की आंख खुल जाती है तो हम बाह्य जगत को भी ठीक देखने लगते हैं और उसके साथ साथ हम अपने अंतर जगत को भी देखने लगते हैं। जब भी हमारे परिणामों में कमी आती है, विशुद्धि में कमी आती है, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, बाह्य कारण खोजते हैं कि क्या कारण है, क्यों मेरे परिणामों में कमी आई है, क्यों मेरे परिणामों की विशुद्धि कम हुई है, ऐसा हमारा बाह्य की तरफ ध्यान चला जाता है। पर जब हमारे भीतर श्रद्धा जागती है, सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति हमारी श्रद्धा होती और वस्तु स्वरूप का ठीक ठीक हमें ज्ञान होता है, तब सबसे पहले मेजर कॉज, रूट कॉज कि आखिर वास्तव में कारण क्या है, वो मेरे भीतर ही कहीं छुपा हुआ है, ऐसा हम उस तरफ अपनी दृष्टि को ले जाते हैं। एक बात इसलिए अपन को सुनने में आती होगी कि भैया द्रव दृष्टि रखो, पर्याय दृष्टि मत रखो, तो हम इन चीजों का ठीक अर्थ नहीं समझ पाते हैं। द्रव को पर्याय की दृष्टि से नहीं देखो, हम ऐसा विचार कर लेते हैं। द्रव को द्रव की दृष्टि से देखने का अर्थ ये नहीं है कि द्रव को पर्याय की दृष्टि से नहीं देखो, पर्याय की दृष्टि से देख करके उससे पर्याय को पर्याय मानो, पर्याय को द्रव ना मान लो, इतना ही द्रव दृष्टि का खेल है और कुछ नहीं। लेकिन जहां कहा जाता है कि द्रव दृष्टि रखो, द्रव दृष्टि रखो, तो क्या करते हैं, दृष्टि तो सारी पर्याय पर रहती है और शब्दों में रहता है कि द्रव दृष्टि रखो। पर्याय को अगर आप ठीक समझें, पर्याय समझें, तो उसमें गाफिलता नहीं हो सकती। ये मनुष्य मेरी पर्याय है, मनुष्य मेरा स्वभाव नहीं है, मनुष्य पना मेरा स्वभाव नहीं है, ये मनुष्य पर्याय मेरी है और ये पर्याय मेरे से भिन्न है। ये दृष्टि अंतर जगत की तरफ जाने पर ही हमारे जीवन में आती है श्रद्धा के द्वारा। जैसे अपन ने पिछले दिन समझा था कि कांच का सामान है तो कांच एक दिन टूटेगा जरूर से, जिस दिन भी धक्का लग के गिर जाएगा उसी दिन टूट जाएगा, मैं उसके टूटने से दुखी हूं तो ये मेरी अपनी कमी कहलाएगी, मेरी अज्ञानता कहलाएगी, क्योंकि मैं जानता था कि ये कांच है और उसकी नजाकत इसमें है कि वो गिरे और टूट जाए, वरना वो कांच कहेगा। ठीक इसी तरह ये मेरी पर्याय है, एक दिन इसका समय पूरा हो जाएगा, ये टूट करके गिर जाएगी, मुझे दूसरी पर्याय अगर मैं अपने जैसे परिणाम बनाऊंगा वैसी मिलेगी, और अगर अपने परिणामों को विशुद्ध कर लूंगा तो मुझे फिर बार बार इस पर्याय जो कि मुझे चारों गतियों में विभिन्न प्रकार की पर्याय मिलती है वो पर्याय नहीं मिले। ये पर्याय को ठीक ठीक समझने की दृष्टि और मेरा द्रव इस पर्याय के साथ नष्ट नहीं होता है ये दृष्टि कौन देता है? ये श्रद्धा ही देती है, ये भीतर में जो सम्यक दर्शन है वो देता है। लेकिन क्या करें, जितना आसान शब्दों में है उतना आसान जीवन में नहीं आता। नहीं ऐसा थोड़ा भी इस शरीर को या थोड़ा भी इस शरीर के आसपास के संबंध और वस्तुओं को धक्का पहुंचता है तो ऐसा मालूम पड़ता जैसे मुझे ही भीतर धक्का पहुंच गया हो। उस समय हम अपने परिणामों को संभाल नहीं पाते, इसलिए फिर कहना पड़ता है कि नहीं भाई, बाह्य पदार्थ भी निमित्त बनेंगे, उनसे भी संभल करके रहना। अपने अंतरंग परिणामों को तो दोषी मानना ही, लेकिन बाह्य जो चीजें बनी हैं, निमित्त बनी हैं, उनसे भी बचने का प्रयास करना। तो देखो दोनों के बीच कितनी अच्छी बात हो गई। हमारे परिणाम बिगड़े तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि हमारे भीतर कोई उपादान में कमी थी इसलिए बिगड़े, और फिर अब जो हमारा उपादान कमजोर है भैया, जल्दी से प्रभावित होता है वाही निमित्तों से, तो वाही निमित्त से भी बचो जी। अपन उसके बाद तुरंत निर्णय ले लेंगे, और अगर पहले ही ये सोच लेवे कि मेरी तो कोई गलती नहीं है, वो तो जी बाह्य निमित्त ही मिले इसलिए मेरे परिणाम बिगड़े, तो हम पूरा का पूरा दोष बाह्य पर दे देते हैं। इनने ऐसा कर दिया तो हमारा ऐसा हो गया, इनने ऐसा कर दिया, ये ना हुआ होता तो, ये ना हुआ होता और ये हुआ होता, ये कैसे संभव था? मेरे भीतर जिस तरह के मैंने कर्म किए हैं, जिस तरह के मैंने अपने आत्मा के को वैभाविक स्थिति में डाल रखा है, उसका परिणाम है, किसी दूसरे का दोष नहीं है। ये दृष्टिकोण हमें श्रद्धा देती है, और हमें अपने भीतर ऐसा दृष्टिकोण बना लेना चाहिए। श्रद्धालु व्यक्ति गिला शिकवा शिकायत नहीं करेगा, मेरा ऐसा सोचना। अगर शिकायत करेगा भी तो अपने आप से करेगा कि मैंने ही ऐसे कोई कर्म किए थे। और अगर हम कदम कदम पर अपने परिणामों को के बिगाड़ में दूसरे के प्रति शिकायत करते हैं और उससे ये सोचते हैं, अपेक्षा रखते हैं कि ये ठीक सब बाहर सब ठीक हो जाएगा तो मैं अपने आप अपने को संभाल लूंगा, तो भैया ऐसा तो कभी संभव नहीं है। सब कुछ फेवरेबल हो जाए, परिस्थितियां अनुकूल हो जाए, फिर भी हमारी मना स्थिति ठीक ना हो तो वे अनुकूल परिस्थितियां भी हमारे परिणामों को निर्मल नहीं बना पाती हैं। इसलिए मुख्यता तो हमारे अपनी मना स्थिति की है, और श्रद्धालु व्यक्ति सबसे पहले अपनी मना स्थिति को ठीक करता है कि हाँ, मुझे अपने को पहले संभाल के रखना है, और जो चीजें मेरे अपने बिगाड़ में निमित्त बनती हैं उनसे भी मुझे अपने को बचाए रखना है। उन चीजों को मुझे नहीं हटाना, कहां तक हटाते फिरूंगा, पूरा संसार भी उठा के कहीं फेंक तो सकता नहीं कि मैं संसार से पृथक खड़ा हो जाऊं। संसार को मैं अपने से पृथक मानूं, ये मैं अपने भीतर कर सकता हूं, मैं इसे हटा नहीं सकता। ये दृष्टिकोण धीरे धीरे आएगा भाई, एकदम नहीं आएगा। आता तो है, द्वेष बस आता है। कोई चीज अपन को नहीं पसंद हो गई तो अपन कहते कि हमें का मतलब, चाहे जैसे होते रहे ऐसा तो हम कह देते, लेकिन ये द्वेष पूर्वक जो है हम दूसरी चीजों से डिटैच हो जाते हैं। द्वेष पूर्वक नहीं, उनकी वास्तविकता को समझकर उन चीजों से डिटैच होना, उन चीजों से अपने को हटा लेना, ये दृष्टिकोण हमें मिलेगा तो इसी श्रद्धा से मिलेगा। धीरे धीरे सच्चे देव गुरु शास्त्र के सानिध्य में जब हम तत्व का अभ्यास करते हैं, हमारे भीतर ज्ञान और वैराग दोनों की शक्ति धीरे धीरे बढ़ने लगती है, और वही ज्ञान और वैराग की शक्ति हमारे जीवन को निर्मल करती है, हमारे परिणामों को निर्मल करती है, वही हमारा वास्तव में धर्म है। एक बहुत छोटी सी घटना अपन समझें और उस घटना से एक संदेश ले लें आज के लिए। एक बहुत गरीब सा आदमी था, लोग उसको पागल समझते थे,
वो रास्ते में चला जाता था तो ऐसे काम भी करता था। वो क्या करता था, कागज के टुकड़े जहां मिल जाते थे उनको रख लेता था पहुंच करके, और ऐसे गड्डी जैसी बना के पॉकेट में रखता था। तो लोग हंसते थे जब कोई उनसे पूछता था कि ये क्या है, तो कहता था कि रुपए है। अब कागज का टुकड़ा है, उसने पहुंच के एक सा करके रख लिया है, कहता है कि रुपए हैं, क्या करोगे? महल बनाऊंगा, बहुत बड़ा महल बनाऊंगा, फिर मैं इस देश का राजा हो जाऊंगा और उस पर मेरा झंडा महल के ऊपर फहराएंगे। वो हमेशा हरेक से कहा करता, और कागज के टुकड़े थे तो सब हंसते थे और आगे बढ़ जाते थे। एक बार एक फकीर वहीं से निकला और उसने भी वो देखा कि सारे लोग उससे पूछ रहे हैं और ये आदमी कागज के टुकड़े को, तो उसको भी एक बार हंसी तो आ गई सबके साथ, लेकिन अगले क्षण उसको रोना भी आ गया। तो लोग बड़े आश्चर्य में पड़े कि भाई अभी तक तो जिसने इसकी हरकतें देखी हैं वो हंसा ही है, लेकिन ये पहला आदमी है कि पहले हंसा फिर बाद में रोया। तो लोगों ने अब उस पागल को तो एक तरफ छोड़ा, उस फकीर को घेर लिया कि बात क्या है, कुछ ना कुछ तो है, आप पहले हंसे, हम लोग तो अभी तक हंसते ही आए हैं, पर आप पहली बार देख रहे हैं कि आप रोए भी हैं इसकी इस हरकत को देख करके, आखिर बात क्या? तो उन्होंने कहा, उस फकीर ने कहा कि ये कागज के टुकड़े जोड़ रहा है और उनको रुपए मान रहा है, वास्तविकता को तो जानता है, बात तो बुद्धिमानी की करता है, लेकिन काम इसका नादानी का है, इसलिए इसकी बुद्धिमानी पर मुझे हंसना आता है और इसकी नादानी पर मेरा मन रोने का होता है। अभी भी नहीं समझ में आया उनके कि क्या बुद्धिमानी और क्या नादानी। तो उस फकीर ने कहा कि बुद्धिमानी यही है कि वो सब हमको संदेश दे रहा है कि हम भी तो कागज ही के टुकड़ा पहुंच पहुंच के धर रहे हैं और सोच रहे कि हमारे पास बहुत पैसा है और हम महल बनाएंगे और हमारा झंडा फेरेगा। यहां कौन आदमी है जो ये नहीं चाहता कि मेरा ही झंडा यहां पर फेरे, मेरा महल बने? तो कह ले बात तो बहुत बुद्धिमानी की करता है, लेकिन साथ साथ उसके समझता नहीं है कि वो क्या कह रहा है, ये उसकी नादानी है। ऐसे ही तो हम भी हैं कि बात तो बहुत बुद्धिमानी की करते हैं, समझते सब बुद्धि की बात है, लेकिन उस बुद्धि की बात हमारे कल्याण की है ये नहीं समझते, ये हमारी नादानी, इस पर मुझे रोना आ रहा है। ऐसा ही हमारा है, हम लोग बातें तो बहुत बड़ी बड़ी बहुत ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन हमारे उस ज्ञान के माध्यम से परिणामों में कितनी निर्मलता आई इस बात की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है, यही हमारी नादानी। जिन सच्चे देवगुरु शास्त्र के सानिध्य से हमें अपने परिणामों को निर्मल करना था, उनके माध्यम से हमने परिणाम निर्मल नहीं किए, तो ये हमारी नादानी तो है, ये हमारी अज्ञानता ही तो है। काम तो बुद्धिमानी का हम कर रहे हैं कि सच्चे देवगुरु शास्त्र का स्वरूप समझते हैं, उनके चरणों में आकर के बैठते हैं, रोज उनकी पूजा और प्रक्षाल करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस बुद्धिमानी पर तो हमें खुश होना चाहिए कि हाँ हम इतने बुद्धिमान हैं कि इन सब का हमने आलम बन लिया है। लेकिन साधन को अपना करके जब हम उससे साध्य की प्राप्ति के लिए तत्पर नहीं होते हैं तब वो हमारी नादानी और अज्ञानता ही है। उस पर तो हमें रोने ही आना चाहिए कि ऐसा हमारा, ऐसी हमारी कहाँ कमी रह गई। भैया हम तो यही समझ पाते हैं कि जब भी सच्चे देवगुरु शास्त्र का सानिध्य मिलने पर भी हम अपने परिणाम निर्मल नहीं बना पाए तो जरूर हमें अपना कान अपने हाथ से पकड़ना चाहिए और भीतर मन ही मन रोना भी आना चाहिए कि देखो इतना सब मैंने पूर्व अर्जित किसी पुण्य के फल स्वरूप पाया और अब मुझे इतना पुरुषार्थ भी नहीं बन रहा है करते कि मैं अपने जीवन को परिष्कृत करूं, अपने जीवन को पहले से अधिक बेहतर बनाऊं। एक सम्यक दृष्टि, अगर उसकी दृष्टि निर्मल है तो अंतर जगत को पा लेता है, इसलिए बाह्य जगत तो उसके पीछे पीछे भागा चला आता है। जिसने एक बार अपने अंतरंग की निधि पा ली, अंतरंग का सुख पा लिया, उसके लिए बाकी सब सुख भी पीछे पीछे चले आते हैं। बाकी सुख उसको चाहिए ही नहीं है, इसलिए वे सुख बड़े हो जाते हैं। मैं तो ऐसा सोचता हूं कि जिस व्यक्ति को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है वो चीजें उसके पास अनावश्यक हो जाती हैं और पड़ी रहती हैं और बहुत सारी पड़ी रहती, और जिस चीज जिस व्यक्ति को जिस चीज की बहुत जरूरत है वो उस उस चीज की जरूरत अपनी इतनी बढ़ा लेता है कि चीजें कमती मालूम पड़ने लगती हैं, तो बड़ा वो लगता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं। सब होने के बाद भी अगर हमारी आकांक्षा बहुत है तो वे सब चीजें भी हमें बहुत थोड़ी मालूम पड़ती, और हमारी आकांक्षा बिल्कुल नहीं है तो दो चीजें भी बहुत मालूम पड़ती कि अब ये तो धरी है और करने का है, बहुत है हमारे पास। क्योंकि हमें अंतरंग में संतोष है, हमें अपनी दृष्टि बदल जाने से अंदर का सुख मिल गया है, इसलिए अब बाहर की चीजों का सुख ढूंढने की आवश्यकता नहीं रही है। और यही चीज समंतवत्र स्वामी यहाँ कहते हैं कि एक दृष्टि की निर्मलता वाला कितनी चीजें वाह्य में पा लेता है। इनको पढ़ करके ऐसा नहीं समझना कि वाह्य में ये सब वैभव पा लेने के लिए मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। अगर ऐसा हम समझ लेंगे तो हमने दृष्टि ठीक नहीं, हमारी अभी ठीक नहीं दृष्टि समझी जाएगी, हमने आशय ठीक नहीं समझा। वाह्य चीजें तो अपने आप हमारे लिए प्राप्त हो जाएंगी अगर हमारे अंतरंग जगत में हम एक बार झांक करके देख आए और वहां जो सुख भरा हुआ है उसको हम प्राप्त कर लेवे। आज अपन ये देखते हैं कि एक सम्यक दृष्टि को, कल तो अपन ने देखा था कि सम्यक दृष्टि ना नरक पर्याय को प्राप्त करता है, ना नपुंसक होता है, ना स्त्री पर्याय को, ना तिरंज को प्राप्त होता है, दुष्कुल भी नहीं उसे प्राप्त होता है, ना दरिद्रता प्राप्त होती है, ना वो अल्प आयु वाला होता है, ना उस अपांग होता है, ये सब चीजें उसके लिए नहीं होती, उसे तो सब श्रेष्ठताएं ही प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन किसी को अगर ये श्रेष्ठताएं प्राप्त नहीं हुई हैं, तब भी वो अगर प्रयत्न करे तो अपनी दृष्टि को निर्मल करके और इन चीजों को भी पा सकता है, वो तो इनसे भी अधिक पा सकता है। ऐसा हमें विचार करना चाहिए, ये नहीं समझना चाहिए, कल भी ये चीज अपन ने समझी थी कि अगर मुझे दरिद्रता मिली है तो ये नहीं है कि अब तो मैं सम्यक दृष्टि तो हुई नहीं जब तो मैं दरिद्र हूं, ऐसा विचार करके दीनहीन होने की आवश्यकता नहीं, और मैं धनवान हूं इसलिए सम्यक दृष्टि हूं ऐसा विचार करके अहंकार करने का काम भी नहीं है। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है किसी का निर्धन और धनी होना, वो तो ये बता रहे हैं, फैक्ट बता रहे हैं, वास्तविकता बता रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने आत्मा में समृद्ध है उसको अगर बाह्य समृद्धि मिल जाती है तो ऐसी कौन सी बड़ी बात, वो तो मिलेगी ही मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। जो अपने भीतर आत्मा में समृद्ध हो गया उसको सब संपत्ति बाहर की भी मिलती है, और वो कैसी कैसी संपत्ति मिलती है आज बताते हैं। और फिर आगे जा करके और ये कहेंगे कि ये सब चीजें तो उसके लिए बीच में मिली हैं, वास्तव में उसकी मंजिल ये नहीं है। अगर उसने इसको अपनी मंजिल मान लिया होता तो शायद ये भी नहीं मिलती, मंजिल तो उसकी मोक्ष है, इसलिए बीच में जो है ये चीजें दी जाती हैं। जैसे कि बच्चा बहुत बड़ी चीज मांगे तो माँ बहलाने की कोशिश करती कि जा ले लो तुम, ए में मान जाओ, ओ में मान जाओ, वो मान भी जाता है लेकिन सम्यक दृष्टि नहीं मानता, वो कहता है ये छोटी छोटी चीजें, हमारा मन बहलाना चाह रहा है, हम तो वो ही लेके रहेंगे क्योंकि हमें मालूम है कि इसके द्वारा वही चीज मिलती है जो फिर कभी छिनती नहीं है, मेरा वो आत्म सुख मुझे चाहिए, मुझे ये बीच में और दुनिया भर के सुख मत दो। पर मिलते हैं, जितना दुनिया के सुख छोड़ो मजा ये है कि वे उतने ही ज्यादा मिलते, और जितने उनको भोगो मजा ये है कि वे उतने ही हमें तकलीफ में डाल देते हैं। बस इतने ही सा सीधा सा गणित है इन बाह्य जगत की चीजों का। ये सम्यक दृष्टि को समझ में आ जाता है तब बाह्य चीजें मिलने पर भी उसमें रस्ता पस्ता नहीं है और अपने अंतरंग परिणामों को निरंतर निर्मल बनाता जाता है। क्या कहते हैं आचार्य भगवान, ओजस तेजो विद्या वीर यशो वृद्धि विजय विभव सनाथा महाकुला महार्था मानव तिलका भवन्ति दर्शन पूता ओजस तेजो विद्या वीर यशो वृद्धि विजय विभव सनाथा महाकुला महार्था मानव तिलका भवन्ति दर्शन पूता दर्शन पूता अर्थात जो सम्यक दर्शन से पवित्र है, जो सम्यक दर्शन से पवित्र हो गया है, जिसकी दृष्टि निर्मल हो गई है, वो व्यक्ति ओज, तेज, विद्या, वीर, यश, वृद्धि, विजय, वैभव और सनात पने को प्राप्त होता है। कहते ओज के मायने हैं उत्साह। जो जिसकी दृष्टि निर्मल है वो धर्म के प्रति तो उत्साह से भरा ही होगा, क्यों नहीं भरा होगा। कहते उसको ओज प्राप्त होता है, उत्साह प्राप्त होता है। और फिर दूसरे नंबर कहते तेज प्राप्त होता। ओज और तेज में फर्क क्या है? तेज का अर्थ है प्रताप या कांति। तो कहते हैं उसे ओज और तेज दोनों प्राप्त होते, उत्साह भी प्राप्त होता है, कांति प्राप्त होती। ये बाह्य के बाह्य में नहीं देखना कि शरीर की कांति प्राप्त हो गई है, वो तो हो ही जाएगी। उसके उसके आत्मा की कांति लोगों को दिखाई देने लगती। भैया जिसके जिसके जीवन में निर्मलता आ गई है उसका ओज उसका उत्साह देखते ही बनता है, बिगाड़ नहीं टालता फिर वो कि मुझे अब ये पूजा करना पड़ रही है। नहीं, उत्साह है उसके धर्म की क्रियाओं के प्रति, उत्साहित है। क्या पूजा, क्या स्वाध्याय, क्या संयम, तप और त्याग, किसी एक चीज में नहीं, वो तो जो आवश्यक उसके लिए है उन सब के प्रति उसके जीवन में उत्साह रहता और उसकी आत्मा कांतिवान होती चली जाती है। और कहते हैं विद्या, विद्या से अर्थ लिया है सहजा आहार्या या च विद्या। कहते सहज जो उसके भीतर बुद्धि उत्पन्न हो जाती है वो ही विद्या है। वास्तव में विद्या क्या है? जो कि हमें सुख दे, शांति दे, जो हमें सुविधा के साधन जुटा दे, ऐसी विद्या तो बहुत है। गर्मी लग रही थी सो पंखा की व्यवस्था हो गई, ये वाली विद्या तो बहुत आसान है, लेकिन इसको विद्या नहीं मानते। ये तो अविद्या ही है, ये तो माया ही है। देखा जाए तो विद्या तो वो है जो उस गर्मी के बीच भी बिना पंखे के शांति का एहसास करा देती है, वो विद्या है, वो सम्यक दृष्टि को प्राप्त होती है। और पराक्रम, दूसरे से लड़ने भिड़ने की ताकत मिल गई, ऐसा नहीं, अपने ही कर्मों से, अपनी ही वासनाओं से, अपनी ही इच्छाओं, आकांक्षाओं और मन वचन काय, इन सब को जीतने के लिए उसके पास पराक्रम आ जाता है। और यश तो फैलता ही है, जिसकी दृष्टि निर्मल है उसका यश फैले बिना कैसे रहेगा। उसके लिए तो लोग सब जय जयकार करेंगे ही कि ये व्यक्ति कितना निर्मल है, इसकी दृष्टि कितनी निर्मल है। और वृद्धि को प्राप्त होता है। कहते यशा विशिष्ट ख्याति, यश का अर्थ है विशिष्ट रूप से ख्याति फैलना। उसको ख्याति नहीं चाहिए लेकिन उसकी ख्याति हो रही। जिसको माला पहनना नहीं है उसको पहनाई जा रही है, और वो कह रहा है कि मुझे इतने से तुम मनाना चाह रहे हो, मैं इतने से मानने वाले वाला नहीं हूं, इस माला वाला की मुझे जरूरत नहीं, इस यश की मुझे जरूरत नहीं, फिर भी उसे यश मिल रहा है। और वृद्धि का अर्थ है कलत्र, पुत्र, पौत्र आदि संपत्ति। उसे ये सारी चीजें भी सहज रूप से प्राप्त हो जाती, जिनके लिए दुनिया उद्यम करती है, जिनके लिए दुनिया पाप करती है, जिन चीजों को पाने के लिए वो एक सम्यक दृष्टि को सहज अपने उस दृष्टि की निर्मलता से प्राप्त होती चली जाती हैं। ये यहां पर ध्यान रखने की चीज है। कहते विजयः गुणोत्कर्षः, उसकी विजय होती है। उसकी विजय किसमें है? किसी को हरा करके जीतने में नहीं है, अपने गुणों को बढ़ा लेने में है। हम जीतते कब हैं? अपने गुण बना ले में तो हम जीत गए। दूसरे के गुण कमती करके, दूसरे को हरा करके, ये तो दुनिया का हिसाब किताब है, ये सम्यक दृष्टि का नहीं है, ये मोक्ष मार्गी का नहीं है। मोक्ष मार्गी को विजय कब प्राप्त होती है? जबकि वो अपने गुणों को और बढ़ा लेता है और अपने दोषों को अपने से निकाल देता, हरा देता है। मैंने अपने ही दोषों को हरा दिया, मैंने अपने गुणों को बढ़ा लिया, ये मेरी विजय हो गई, अपने ऊपर ही विजय प्राप्त, ऐसी विजय प्राप्त करता। और कहते विभवः धन धान्य द्रव्यादि संपत्ति, और ये भी वैभव तो उसके पीछे पीछे चला आता है। धन धान इत्यादि जो है, गोधन को धन कहते हैं, धान्य इत्यादि तो ब्रीह आदि, इसको धान्य बोलते हैं। ये सब उसको संपन्नता भी उसके जीवन में अपने आप प्राप्त हो जाती है। और कहते सनाथा इन सबसे युक्त पना, ये सब चीजें सनात पना अर्थात इनके अभाव में ही तो व्यक्ति अपने को अनाथ मानता है कि ये कछु नहीं है हमारे पास, हम बड़े दीन दुखी हीन है। सो कहते नहीं, इन सब के द्वारा वो सहित है, इन सब से वो संपन्न होता है, और इतने ही नहीं महाकुला और महत कुल में पैदा होता है। कुल की महानता किस बात में है भैया? जहां पर रत्नत्रय की परंपरा चलती हो वो कुल की उच्चता है। जहां परंपरा से रत्नत्रय चला आ रहा हो, रत्नत्रय की आराधना होती हो, सच्चे देवगुरु शास्त्र की आराधना होती है, उसे हम श्रेष्ठ कुल मानते हैं। ऐसा कुल जिसे, अर्थात जहां पर पवित्र आचरण सहज रूप से मिलने वाला है, उस पवित्र आचरण वाले कुल में उत्पन्न होता है। व्यसनी के कुल में उत्पन्न होने वाला महाकुल में उत्पन्न होने वाला नहीं माना जाता भैया। जो निर्व्यसनी है, सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति अटूट श्रद्धा जिसके भीतर है, परंपरा से जिसके यहाँ रत्नत्रय की आराधना होती, वो कुल श्रेष्ठ है। अब देखो अपन को ऐसा कुल मिला के नहीं मिला जहां रत्नत्रय की आराधना होती। दो बातें जो है धर्म की सुनने मिलती हैं, ये कोई पूर्व में अर्जित पुण्य ही तो है जिसके परिणाम स्वरूप पाया। और अब देख लो कि आगे को क्या कर रहे अपन, अगर इसका सदुपयोग नहीं करेंगे तो आगे को हमें क्या मिलेगा। ये कहते हैं इतना पुण्य तो कर ही लेना चाहिए जिससे कि उस पुण्य को और करवे की बुद्धि बनी रहे। इतना पुण्य तो कर ही ले, उस पुण्य की चर्चा करने के लिए भी पुण्य चाहिए। ये सब चर्चा कैसे कर पा रहे हैं? साता के उदय में हो रही है, मंद कषाय है, और अभी कषाय तीव्र हो जाए और भीतर में दृष्टि जो है गड़बड़ा जाए तो कुछ भी नहीं सुहाएगा। लगेगा कि क्या रखा है इस सब चीजों में, इसमें क्या मिलने वाला है। अभी चलें सो दुकानदारी करें, महाराज को भी तो वही दुकानदारी से चार पैसा कमा के भोजन करवाओ, नब्बे भी बैठे रह जाए कचू ने कर पे, ऐसा आ जाए। हाँ, क्या भाव आने में क्या देर लगती है? हम उस चीज को अधिक अच्छा मान लेंगे, भौतिक सुखों को अच्छा मान लेंगे, लेकिन जहां हमें अपने कल्याण की बात रुचती है तो समझना कि कोई ना कोई पल्ले में हमारे पूर्व में अर्जित अच्छा कर्म तो है। ये उसी अच्छे कर्म का परिणाम है कि महाकुल अर्थात श्रेष्ठ रत्नत्रय की परंपरा हमें प्राप्त होती है। महार्था महंता अर्था धर्म अर्थ काम मोक्ष लक्षण येषाम, जिसे चारों प्रकार के पुरुषार्थ मिलते हैं। अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ को भी पुरुषार्थ माना है, लेकिन धर्म से समन्वित होना चाहिए। जो अर्थ पुरुषार्थ है, जो हम कमाते हैं, वो अगर हमारा धर्म से समन्वित है, नीति न्याय पूर्वक है, तो वो अर्थ पुरुषार्थ भी श्रेष्ठ है। और अगर हम संसार में संतति बढ़ाते हैं, काम पुरुषार्थ करते हैं, अगर वो धर्म से समन्वित है, व्रति व्यक्ति व्रतों से युक्त है अगर, और फिर इस प्रक्रिया को करता है, संतान की सेवा को बढ़ाता है और अपने परिवार का रक्षा करता है, तब वो जो काम पुरुषार्थ है उसे भी अपने यहाँ पर गलत नहीं माना। और धर्म अर्थ काम इन पुरुषार्थों से में भी सबसे श्रेष्ठ मोक्ष पुरुषार्थ, वो तो व्यक्ति जो निर्मल दृष्टि है वास्तव में वही मोक्ष पुरुषार्थ कर पाता है। इस तरह अगर अपन देखें तो एक सम्यक दृष्टि जीव स्वर्ग से या नरक से कहीं से भी आए और मनुष्य हो वह, तो उसको कितनी बातें प्राप्त होती, ये सब बातें उसे यहाँ आकर के प्राप्त होती हैं। ये किसकी वजह से प्राप्त हुई? उसकी दृष्टि की निर्मलता से। और दृष्टि की निर्मलता कैसी है? क्योंकि उसने इन चीजों को चाहा नहीं था, इसलिए उसको ये सारी चीजें मिल गईं। जो इन चीजों के पीछे भागता है उसकी दृष्टि ठीक ही नहीं, इसका मतलब ही है। कह रहे आप इन चीजों में सुख ढूंढ रहे हो, तो ये चीजों में सुख है ही नहीं, ना मिलने वाली आपको। जिस दिन हमें लगेगा कि इन चीजों में सुख नहीं है, उस दिन ये सब चीजें हमें बहुत अधिक मात्रा में आसानी से मिल जाएंगी। यही जो है इसका अर्थ है। आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम मा पूर्ण माध्यंत विमुक्त मेकम विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शुद्ध नयोभ्युदेति। निर्मल दृष्टि तो वो है जिसमें कि हम अपने ही आत्म स्वरूप को देखते हैं और बाह्य जो संकल्प विकल्प का जाल है उससे बच जाते हैं। ऐसी दृष्टि जिसकी है उसी के लिए ये सारी चीजें बहुत आसानी से मिलती हैं। आत्मा का स्वभाव तो परभावों से भिन्न है और पूर्ण है और एक है। मैं उनको चीजों से फुलफिल करना चाहता हूँ, मुझे अपने जीवन में रिक्तता मालूम पड़ती है तो चीजें जोड़ करके उसे भरना चाहता हूं। कहते हैं नहीं, अभी दृष्टि ठीक नहीं हुई, चीजों से नहीं भर पाएगा जीवन। जीवन तो जो है अपने जीवन को वास्तविकता को समझने से ही भरेगा। और वास्तविकता क्या है? विलीन संकल्प विकल्प जालम। थोड़ी देर के लिए संकल्प विकल्प जो हमने कल भी कहा था, अपन ने चर्चा की थी कि अपने पराए के दिन भर के उपाय जो करते रहते हैं, राग और द्वेष करते रहते हैं, वो दृष्टि को हमारे विकृत करने वाली चीजें हैं। इसलिए संकल्प और विकल्प, इन दोनों से मुक्त होने की प्रक्रिया ही श्रेष्ठ है। संकल्प क्या है? ये बाह्य पदार्थ मेरे हैं, ये संकल्प है, और मैं सुखी हूं दुखी हूं इस प्रकार का भाव आना, यही तो विकल्प है। सो दिन भर बताओ इसके अलावा और कुछ होता है? और ये क्या चीज है? बढ़ते हुए परिग्रह को देख करके और हर्षित होना, ये परिग्रहानंद नाम का रौद्र ध्यान तो है। सो कहां जावे को पाया, जो नरक जावे को, रौद्र ध्यान से तो नरक जाते। इतना सीधा सीधा सा हिसाब है, और हम दिन भर क्या करते हैं? यही करते हैं। ये हमारी नादानी है। हम बातें तो बहुत सारी जानते हैं लेकिन करते क्या? हमें अब अपने उस ज्ञान के साथ साथ आचरण को भी देखना चाहिए कि वो आचरण हमारा इस ज्ञान से पवित्र हो रहा कि नहीं हो रहा। मेरे संकल्प विकल्प कितने कम पड़े हैं, तेरे मेरे का भाव जो है मेरा कम हुआ कि नहीं, और मैं बाह्य चीजों में सुख दुख अब ज्यादा नहीं मानता हूं। मैं अपने सुख दुख का कारण अपने भीतर ही खोजता हूं, और मैं अपने को अपना मानता हूं, पर पदार्थों को तो पर ही मानता हूं। ठीक है, पर पदार्थों से मुझे घृणा नहीं है, द्वेष भी नहीं, पर को पर मानता हूं, मैं उनको अपना नहीं मानता। अगर इतना भी हम अपने जीवन में अभ्यास करें तो ये अभ्यास हमारी दृष्टि को निर्मल करेगा, और दृष्टि की निर्मलता पूरे जीवन को निर्मल करेगी। इसी भावना के साथ कि हम सब की दृष्टि निर्मल हो, हमारा जीवन हमारा आचरण पवित्र हो, इसी भावना के साथ कुलिया आचार्य गुरु विद्यासागर।